जी ने उनको किसी प्रकार से उनको ला करके श्रीमद् भागवत सुनाया, इसलिए उन्होंने कहते हैं प्रतिष्ठितो की निर्गुण अपि परिनिष्ठितो, मैं निर्गुण्य में निर्गुण भगवान निराकार ब्रह्म में मैं परिनिष्ठित था। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति नहीं होती, उसकी उपासना नहीं होती, उसमें अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की कल्पना होती। ब्रह्म माने वहां क्या, मैं चिन्मय वस्तु हूँ। यहाँ तक तो कुछ ठीक है किंतु इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, इसलिए आत्मा रामस्य मुनयो उरुगंथा उप उरुक्रमे कुरुवंत है तो किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान में इतने गुण हैं, उनमें इतनी दया है, उनमें इतनी रसिकता है, क्योंकि रसो वैश्य हैं, इसलिए जन की ग्रंथि जगत की खुल गई है, माया खुल गई है, ऐसे मुक्त आत्माराम पुरुष भी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर के उनकी भक्ति करने लगते हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने उनके पास में दो श्लोक भेजवाया था, परहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो करणी कार, और दूसरा गुण क्या उनका, अहो बकीयम स्तन काल। एक बकी बक की भगिनी पूतना बाल रुधिराक्षना रुधिर पीने वाली, बच्चों का मांस खाने वाली, और वो बेस बना करके मैया का केवल गया, उस बेस से ही उसको धातृ उचित गति दे दी, मैया जैसी गति उनको दे दी। भगवान इतने बड़े दयालु हैं, बस आकर्षित होकर के आत्मारामत्व छोड़ दिया और भगवान के गुणों पर आकृष्ट होकर के श्रीमद् भागवत का पूरा अध्ययन किया और परीक्षित की महाराज की सभा में सुनाया, और परम भक्त ऐसे हुए जो इन्होंने भ्रमर गीत, गोपी गीत, वेणु गीत इत्यादि का अध्ययन किया, जुगल इत्यादि का, जो श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। इस तरह से वो परम भक्त हुए। और दूसरे थे सनक सनंदन सनत सनत कुमार, ये भी निर्गुण में उपासना में थे, भक्ति से संबंध नहीं था। ब्रह्मा जी की कृपा से तुलसी जी के मकरंद जो कि कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पित थी, उसके बहुत दूर से सुगंध आई और भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के वहां दर्शन करने के लिए गए और उनको भक्ति हुई। इसलिए यह निर्गुण ज्ञान की अपेक्षा, निर्गुण की अपेक्षा ये जो भक्ति है, भक्ति का ज्ञान है, ये बहुत श्रेष्ठ है। अब भक्ति के महिमे भी दो प्रकार के हैं। भक्ति में भी जो तत्व ज्ञान, बिना तत्व ज्ञान के भक्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान क्या, मैं कौन हूं, प्रभु कौन है, भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, ये सब जो है ये तत्व ज्ञान है। जीव कौन है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भगवान उनका विभिन्न अंश तत्व है। विभिन्न अंश माने क्या, उनका डायरेक्ट अंश न होकर के उनकी शक्ति तटस्था सम्यक शक्ति समन्वित ब्रह्म का जीव अंश है, चेतन है, शुद्ध चेतन है। और भगवान कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। और भी भागवत क्या कहते हैं, स्पष्ट रूप से घोषणा करती हैं भागवत, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ श्याम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, कृष्ण को कहा। इसलिए ये कृष्ण कौन है, यही पर ब्रह्म है, समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त अंशों के अंशी स्वयं भगवान। इन दोनों में जीव और ब्रह्म में कोई संबंध है, वो संबंध है भक्ति का संबंध, ये उससे जुड़े हुए हैं। जब जीव शुद्ध अवस्था में रहता है तो ये दोनों का संबंध जुड़ा होता है, और जब जीव विमुख हो जाता है माया में, भगवान को भूल जाता है, तो ये भक्ति भी लुप्त हो जाती है, अंतर्निहित छिप जाती है। और इस तत्व ज्ञान को, भक्ति का भी कुछ तत्व ज्ञान है, भीष्म पितामह जी तत्वज्ञानी थे, ये लोग सब तत्वज्ञान में पूर्ण तक्त हैं। प्रहलाद महाराज जी तत्वज्ञान के सम्राट हैं, वो सबके अंदर में भगवान को देखते थे और भगवान के भाव को भगवान में देखते हैं, जीवों का भगवान के प्रति जो भाव है सबके हृदय में वो देखते थे और भगवान में सब जीवों को देखते थे, इसलिए उनको महाभागवत कहते हैं। उनमें तनिक भी कोई संसारिक लौकिक वासना कुछ नहीं थी, अन्नाभिलाष नहीं था, इसलिए प्रभु ने कहा जे बर मांगो तो उन्होंने क्या मांगा, यदि हृदय में कुछ मांगने की इच्छा भी तो वो संपूर्ण रूप से दूर हो जाए, बस आपकी भक्ति रहे। किंतु यह जो भक्ति है ये भी दो प्रकार की है, एक ऐश्वर्यमयी और एक माधुर्यमयी। भीष्म पितामह जी, ब्रह्मा जी की भक्ति, शंकर जी की भक्ति, यहाँ तक कि हनुमान जी की भक्ति, भरत जी की भक्ति, सीता जी की भक्ति, यहाँ तक कि और आगे बढ़कर के द्वारका में रुक्मिणी सप्तमाला इत्यादि की भी भक्ति कुछ ऐश्वर्यमयी है। कृष्ण लोक को यदि चार खंडों में विभाग करें तो निचले भाग का नाम, सबसे निचले भाग का नाम जो बॉर्डर है उसको कहते हैं गोलोक। उसके भीतर में कृष्ण के तीन लोक द्वारका, मथुरा और ब्रज, अथवा उसी को वृंदावन भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं। तीनों चीज एक पर्यायवाची शब्द हैं। गोलोक में ऐश्वर्य वैकुंठ से भी अधिक है, किंतु थोड़ी सी भी वहां थोड़ा सा माधुर्य है, बहुत थोड़ा, किंतु उसका कोई परिचय नहीं। द्वारका में है ऐश्वर्य किंतु माधुर्य भी कुछ कुछ है, एक तिहाई भाग, वो भी माधुर्य को कुछ ढक लेता है। मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों बराबर, कभी वसुदेव जी कृष्ण की स्तव स्तुति करते हैं, जो सुधा मैया आप तो भगवान हैं, और कभी कभी जोग माया से उनकी बुद्धि को थोड़ा सा अच्छा भी कर देने पर, अरे हमारा बेटा अभी कंस आकर के मारेगा, इसको गोकुल ले जाएं। इसलिए ऐश्वर्य माधुर्य दोनों, और ब्रज में गोलोक से भी वैकुंठ से भी ऐश्वर्य अधिक किंतु माधुर्य के द्वारा परिमंडित अच्छा दीप है। वहां पर इसका एक विचार है, परिभाषा जरा देखेंगे। ऐश्वर्य हो और न हो, लौकिक शब्द बंधुवत भाव कृष्ण के प्रति बना रहे, इसका नाम माधुर्य है। फिर से सुनिए, कृष्ण का ऐश्वर्य हो खूब न हो, चाहे गोवर्धन को काली अंगुली पर उठा लिए हो, पुतना जैसे राक्षसी इत्यादि को क्षण मात्र में वध कर सकते हैं, ये सब ऐश्वर्य है। जसोदा जी को अपने मुख में असंख्य ब्रह्मांड दिखला दिया, ये सब ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य हो ना हो, लौकिक सद्बंधवत भाव बना रहे, हमारा बेटा है, हमारा सखा है, हमारा प्रियतम है, इसको कहते हैं माधुर्य। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? अलौकिक जिसमें बातें हैं, शक्ति हो जो कि साधारण लोगों में न हो, लौकिक मनुष्यों में ऐसी बातें न हो, तो उसको कहते हैं ऐश्वर्य। भक्ति इसी प्रकार से दो प्रकार, ऐश्वर्यमयी और माधुर्यमयी। ऐश्वर्यमयी भक्ति द्वारका तक है, वहां तक मथुरा तक भी चली गई वैकुंठ से पार करके। ब्रज में माधुर्यमयी भक्ति का वहां पर स्थान है, वहां पर सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाएंगे, हनुमान नहीं चढ़ सकते, भरत जी राम के कंधे पर नहीं चढ़ सकते, अपना जूठा नहीं खिला सकते, लक्ष्मण भी नहीं, सीता जी भी नहीं, और यहां पर गोप बालक अपने मुख से निकाल करके कोई अच्छी सी चीज है निकाल करके कृष्ण के मुख में ठूस देंगे और उनको पछाड़ कर धूल लेकर के उनके गर्दन पर रगड़ देंगे। तुम किस विषय में हमसे बड़ा, अरे तेरे बाप को 11 लाख गाय की 9 लाख और हमारे बाप को 11 लाख गाय हैं, कैसे बड़ा हो जाएगा? बड़ा नहीं, कृष्ण को अपना प्राण समझते हैं। ये कहीं नहीं है, द्वारका में भी नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, बैकुंठ में नहीं है, कहीं नहीं है, ये केवल ब्रज में है। यशोदा मैया जिस प्रकार से कृष्ण को धमकाती हैं, शिक्षा देती हैं, कौशल्या जी धमकाएंगी न देवकी वसुदेव जी झमकाएंगे। यहाँ प्रेम की माधुर्य की पराकाष्ठा है ब्रज में, इसलिए यहाँ संभव है, इसलिए वहां पर माधुर्यमयी भक्ति और सब जगहों में। इसलिए इस ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त जहाँ कुछ कुछ भगवत्ता का ज्ञान है, जो ये कृष्ण भगवान है, ब्रज में भी कोई जाए, जैसे उद्धव गए, कृष्ण को सब समय भगवान समझा, जैसे गोपियां, वहां का एक मोर, वहां का एक व्यक्ति, कोई भी उनका दास भी हो, कृष्ण को भगवान नहीं मानता, ऐश्वर्य लाख दिखाए नहीं मानेगा, वो अपना सखा, अपने स्वामी का पुत्र मानेगा दास। नंद बाबा के रक्त पितक इत्यादि दास हैं, वो कृष्ण को क्या समझेंगे, हमारे बाबूजी का ये लड़का है, उसको गोदी में लेंगे, चुंबन करेंगे, उसको बेटा जैसा मानेंगे, भगवान नहीं। अयोध्या में ये संभव नहीं है हनुमान इत्यादि के लिए। इसलिए यहाँ की जो भक्ति है, जैसे जसोदा जी का देखिए, कैसे कृष्ण का लालन पालन करते हैं, भगवान हो तो अपने घर में रहे, भगवान कभी मक्खन के लिए बचलता है, कभी भगवान को क्रोध होता है, भगवान तो आत्मकाम आत्माराम होता है, हमारा बेटा कैसा, एक मक्खन लगाई हुई रोटी के लिए मचलता है, थोड़ा सा मक्खन के लिए क्रोधित हो जाता है, दधी भांड को तोड़ देता है, कितनी बार झूठ बोलता है, मट्टी खाई खाई थे ने? तो नहीं मैया, नहीं खाई, अच्छा देखूं तो, ऐसे देखती है, उनको चोर कहती हैं, ब्रज में सब जगह चोरी करने के लिए जाते, ये ब्रह्म का ये लक्षण है, इसलिए ब्रजवासी उनको कभी नहीं मान सकते हैं। कभी कभी गोपियों को उन्होंने कहा, गोपियां उनको नहीं उलाना, क्या उनको जरा समझाते, तुम ब्रह्म कैसे हम जानते हैं, याद नहीं है तुम कैसे भीख मांग रहे थे प्रणय की, ब्रह्म प्रणय की भीख मांगता है, अरे राधा जी के पैया तो रोज पड़ता है, मैया सो रही है ना, कृष्ण को लेकर के मैया सो गई, कृष्ण सोचता है कि मैया सो जाए, मैया सो जाए, मैया सो गई क्या करता है, मैया को छोड़ करके कहां गया, कहां चला गया, इस तरह से गोपियों के पैया पड़ता है। जत किं करीश बहुसा खलुका गुबानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौली जस्या कदा रश्मिधे विषभानु जाया ततखेली कुंज भवनांगन मार्जनी। यहाँ पर राधा जी की जो दासियां हैं, कुंज द्वार पर खड़ी होकर के कहते हैं, लौट जाओ, अरे काले लौट जाओ, आज हमारी स्वामी जू काले को वस्त्र को भी धारण नहीं करती, उसको छिपा दिया है, आज काले से उनका कोई संबंध नहीं, काले पर बहुत बिगड़ गई हैं, तुम यहां से जल्दी से चले जाओ। और काकू पैया कर रहे हैं, कौन, ब्रह्म की एकदम चरम सीमा पर, ब्रह्म की चरम सीमा, रसो बैसा होने पर भी उन गोपियों की पैया पर पड़ते हैं, बार बार मनाते हैं हमारे गोस्वामियों ने, यहां तक कि विट्ठलाचार्य ने भी इसका वर्णन किया, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मान कृपा निधे स्वास्थ्रिया चरण किंग करी गुरु प्राणनाथ वृषभानु नंदिनी श्री मोखाब्ज रस लोल सटपद। आप तो राधिका जी के मुख की रस को आस्वादन करने के लिए सटपद माने भौरे की तरह हैं, उस राधा जी में हमारी हमारी भक्ति हो, जन्म जन्मांतर उनकी भक्ति है, हमारे रूप सनातन जी ने, रूप रघुनाथ जी ने, संध्या जी ने, इससे ऊपर और कितना क्या लिखा, ये माधुर्यमयी भक्ति है। इधर जहां पर भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान है, तहां तक ब्रज की भक्ति नहीं होगी, इसलिए उसके लिए विशेष रूप से रागानुगा भजन करना होगा, और विशेष करके रूपानुग होना पड़ा गया, तब जाकर के कुछ समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। इसलिए इन सब चीजों का समझ करके तब भक्ति में प्रवेश करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। थोड़ा सा इसी विषय में मैं ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो सनातन धर्म है, नाम साधारण रूप से हम अभी जो बतलाया ना, महाराज हरिश्चंद्र का जो सत्यवादिता है उनकी, जो सत्यवादिता है, इसको हम सनातन धर्म कहते हैं। शिवी और दधीची का नाम सुने होंगे। दधीची ने क्या किया, जिंदी अवस्था में, जीवित अवस्था में ही अपने शरीर को दान कर दिया और उसे जो हाड़ से जो वज्र बना उसे कौन भृत्रासुर का वध किया गया। जब ये लोग उनके पास में, दधीची के पास में पहुंचे, देवताओं ने कहा जे महाराज हम आपके पास में आए हैं कुछ दान मांगने के लिए। तो मांगो क्या चाहते हो, तो आपके हम इस शरीर को चाहते हैं जिससे आपकी हड्डी से वज्र बने और उसका वध हो। हंसने लगे, बड़े भारी स्वार्थी हो तुम, जगत में तुम जैसा और कोई स्वार्थी नहीं। कहा जी महाराज स्वार्थी तो हैं किंतु जगत की रक्षा के लिए करते हैं, तो ये वृत्रासुर समस्त जगत को ध्वंस कर देगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आपकी हड्डी को मांग रहे हैं। श्री का आप लोग जानते हैं, किंतु इसे सनातन धर्म का बहुत दूर तक संबंध नहीं, ऐसे समझिए। कह देते हैं सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसको कहते हैं जरा समझिए। अभी जो हमने भक्ति की व्याख्या की ये सनातन धर्म है। कैसे, अब इसको समझिए थोड़ा सा। सनातन माने होता है सदातन, जो भूत भविष्य वर्तमान में सदा वर्तमान रहे उसको कहते हैं सनातन। शरीर कितना दिन रहता कोई ठीक नहीं, आजकल वर्षों माने 100 150 200 जो प्रक्रिया के द्वारा 5000 10000 सौ भरी की भांति कर लें तो और थोड़ा सा बढ़ जाए, उसे भी और थोड़ा सा कर लीजिए तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, ब्रह्मा के समान आयु हो जाएगी। ब्रह्मा की आयु आप जानते हैं उनकी आयु भी सीमित है, 100 वर्षों की है उनकी वर्षों की, ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएंगे। देवताओं को जो अजर अमर कहा जाता है ये पारलौकिक नहीं पारमार्थिक है, लौकिक, बहुत कम इनकी आयु, इसलिए ये सब जो चीजें नष्ट हो जाती हैं इनको सनातन नहीं कहा। हमारे शास्त्रों में कहा गया अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौक्षाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण को परिपूर्ण ब्रह्म सनातन कहा गया। गीता में कहते हैं ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं एकमात्र सनातन हूँ और हमारा जो सनातन अंश है जीव ये भी सनातन है। तो सनातन कौन हुए, दो, एक भगवान और उनका जो पूर्ण चिन्मय अंश है जो कभी नष्ट नहीं होता सब समय वर्तमान रहता है उसको कहते हैं सनातन। और भी गीता में कहा गया नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं तापोषो न शोषयति मात् अच्छेद्योऽयम् अक्लेद्वयम् अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो सनातन। यहाँ पर आत्मा के लिए इसका व्यवहार हुआ, इसलिए दो चीज सत्य हैं, नित्य हैं। एक नित्य सनातन कौन है, प्रभु है, समस्त सनातनों के मूल सनातन, और दूसरा उनका अंश ये जो जीव है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो भक्ति है, वो भी सनातन है। भक्ति रे वैनं दर्शयति नैति दर्शयति भक्ति रेव भूषि इत्यादि कहा गया। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया सवई पुंसांग परो धर्मो, भक्ति को यहाँ पर पर धर्म कहा गया। अहेतुक्य अप्रतिहता जयात्मा संप्रति, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है, किंतु इसका अर्थ मत लगाएंगे ये आत्मा मैंने, मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, अरे समस्त आत्माओं की आत्मा कौन है, प्रभु कृष्ण है, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसके प्रसन्न होने से ये आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। कोई भी अपने प्रसन्न के लिए चेष्टा करेगा प्रसन्न नहीं हो सकता, कृष्ण के प्रसन्न होने से अपने आप तस्मिन तुष्टे, इसलिए इस चीज को ठीक रखेंगे। भगवान को यदि किसी ने प्रसन्न किया अपनी सेवा से, वो अनुसंगिक रूप में वो अपने आप उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई। इसलिए ये जीवों को आत्मा को आनंद देने वाली, कृष्ण को आनंद देने वाली जो भक्ति वृत्ति है यही पराधर्म है, पर धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और भी बतलाया गया है परानुरक्ति ईश्वर। ईश्वर में क्या सा परानुरक्ति, ईश्वर में परानुरक्ति। परानुरक्ति मैंने क्या, शरीर की आसक्ति मत समझो। जैसे एक बाघिन मर गई तो बाघ मर गया तो उसके लिए दो दिन के बाद में एक बाघिन मर गई, एक स्त्री मर गई उसके लिए बीस खा करके आत्महत्या करके रेलवे कट करके हम मर गए, ये प्रेम नहीं। प्रेम मछली जैसा होना चाहिए, जद्यपि उसका भी लौकिक उदाहरण है, पानी के बिना जैसे छटपट करती हुई मर जाती है, भगवान के गृह में वैसे ही छटपट करने लगे। न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ कंदामि सब भाग्य भरम प्रकाश। लोग कहते हैं कि हमें प्रेम ही कहां, यहां तक कि वैकुंठमयी जो वैधि भक्ति से पाए जाने वाली भक्ति है वो भी चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य इत्यादि के मतानुसार वो भी भक्ति नहीं। अभी पूर्ण रूप से भक्ति तो है, उत्तमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति भी बिना प्रेम के वैकुंठ नहीं मिलता, किंतु वह प्रेमामयी भक्ति ब्रज की भक्ति हो, ब्रज भाई भाव वाली माधुर्यमयी भक्ति हो, रागानुगामयी भक्ति हो, तो किसी समय में वो पा सकते। इन तीनों भावों में सख्य बासल और मधुर, इन तीनों में भी गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से ऐसी भक्ति को पाने के लिए हम लोग चेष्टा करें, और इसके जो अनुभव करने वाले हैं, रसिक वैष्णव है, तत्त्व के वैष्णव है, उनके चरणों में हम लोग जाएं। जिनको जागती किसी स्वार्थ की इच्छा नहीं, कामना नहीं, लौकिक कोई कामना नहीं, विषयों में आसक्त नहीं है, इसलिए उनकी परिभाषा भी भागवत में दे दी। क्या शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म निष्णातो, क्या वो तस्मात गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम कल्याण हमारा कैसे होगा, इसको जानने के लिए व्यक्ति जो होगा हाथ में श्रद्धा रूपी समिधा को लेकर के जाएगा और उन गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करेगा और पूछेगा हमारा कल्याण कैसे होगा। गुरु का लक्षण उसमें बतलाया, शब्द ब्रह्म में निष्णात, शब्द मन है वेद उपनिषद शास्त्र भागवत गीता पुराण इत्यादि में, गोसाइयों के ग्रंथों में निष्णात होगा और हमारी सारी शंकाओं को दूर करने वाला हो, उसमें प्रतिष्ठित हो और साथ ही साथ भगवान की भक्ति के द्वारा उनकी उपलब्धि हो। जिसको भगवान की उपलब्धि नहीं हुई है शब्द शास्त्र में, पारंगत होने पर भी वो सद्गुरु नहीं है, इसलिए ऐसे गुरु को भी छोड़ करके भगवत भक्ति की उपलब्धि करने वाला जो व्यक्ति है उसके शरण ग्रहण करने से उसमें संसारी कोई भी आसक्ति नहीं। ऐसे सब उदाहरण दिए गए हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। बहुत अभी समय हो गया, अभी यदि आप लोग चालू रखना चाहते हैं तो अभी हमारे शुभानंद ब्रह्मचारी जी हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, आपको कुछ उपदेश देंगे, फिर कीर्तन करेंगे और हमें जाने का आदेश दें तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए समय हो गया है। अन्यथा भी 10 मिनट और ठहरूंगा, शास्त्री जी के वचन नहा तो थोड़ा सा सुनिए।